एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका साथी
और मैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। है तो बिजनेस की दुनिया पर पढ़ने में किसी नॉवेल जैसी।
हाँ बिल्कुल, जॉन ब्रूक्स की बिजनेस एडवेंचर्स। और मजे की बात यह है कि बिल गेट्स, वॉरेन बफे, इन सब दिग्गजों की ये पसंदीदा किताब रही है।
सोचिए, और ये कोई नई किताब नहीं है, ये तो 1950s और 60s के कहानियों का कलेक्शन है।
तो सवाल उठता है ना कि 50-60 साल पुरानी अमेरिकी बिजनेस की कहानियाँ आज हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? मतलब कितना कुछ बदल गया है तब से अब तक।
टेक्नोलॉजी बदल गई, बाजार के तौर तरीके बदल गए, पर शायद एक चीज है जो नहीं बदली, वो है इंसान का स्वभाव, ह्यूमन नेचर।
अच्छा
हाँ, ये किताब यही दिखाती है कि बड़े बड़े कॉरपोरेट फैसले हो या मार्केट का उतार चढ़ाव, इनके पीछे आखिर में इंसानों की अम्बिशन, उनका डर, उनका ईगो, कभी कभी उनकी बेवकूफियां, यही सब काम कर रहा होता है।
यानी ये सिर्फ क्या हुआ नहीं बताती बल्कि क्यों हुआ,
इसकी गहराई में जाती है।
बिल्कुल,
नंबर्स और स्ट्रेटजी से आगे जाकर उन इंसानी वजहों को समझने में मदद करती है जो किसी वेंचर को बनाती हैं या बिगाड़ती हैं।
हाँ।
तो चलिए इन्हीं कहानियों के जरिए इस ह्यूमन एलिमेंट को एक्सप्लोर करते हैं।
तो पहले लेखक के बारे में जान लें। जॉन ब्रूक्स, 1920 से 1993 तक, ये कोई टिपिकल बिजनेस एक्सपर्ट या मैनेजमेंट गुरु टाइप के नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो द न्यूयॉर्कर मैगजीन के लिए लिखते थे, एक बहुत सम्मानित लेखक थे।
और उनकी खास बात थी उनकी बैकग्राउंड,
है ना?
हाँ बिल्कुल, उन्होंने प्रिंसटन से लिटरेचर पढ़ा था और उन्हें वॉल स्ट्रीट पर काम करने का अनुभव भी था। तो एक तरफ कहानी कहने का हुनर, दूसरी तरफ फाइनेंस की समझ।
इसीलिए उनका एनालिसिस इतना बैलेंस्ड और ह्यूमन लगता है। वो सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं कहते, वो किरदारों के अंदर झांकते हैं। उनकी सोच, उनकी दुविधाएं, उनके मोटिवेशंस सब कहानी का हिस्सा बन जाते हैं।
और उनके स्टाइल की यही खूबी है कि वो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल चीजों को भी एकदम मानवीय ड्रामा की तरह पेश कर देते हैं।
हाँ, उनकी दूसरी किताबें भी हैं, वंस इन गोलकोंडा, द गोगो ईयर्स, सब में यही बात है। उन्हें अमेरिकन फाइनेंशियल हिस्ट्री के सबसे अच्छे स्टोरी टेलर्स में गिना जाता है। फैक्ट्स को कहानी में ढालने का हुनर था उनमें।
तो ये किताब बिजनेस एडवेंचर्स, इसमें आखिर है क्या? जैसा आपने कहा, ये कोई सक्सेस के सीक्रेट्स वाली गाइड नहीं है।
नहीं, ये 12 डिटेल्ड आर्टिकल्स या कह लीजिए केस स्टडीज का कलेक्शन है। हर कहानी अमेरिका के कॉरपोरेट और फाइनेंशी इतिहास के किसी न किसी यादगार मोड़ को पकड़ती है, ज्यादातर 50s और 60s के दशक की।
और इन सब कहानियों के पीछे एक धाधा है, सेंट्रल आइडिया जो दौड़ता रहता है।
हाँ, और वो आइडिया ये है कि बिजनेस और फाइनेंस चाहे कितने भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना लें, फंडामेंटली एक ह्यूमन एक्टिविटी है, इंसानी काम है। सक्सेस या फेलियर सिर्फ मार्केट फोर्सेस या परफेक्ट प्लानिंग से तय नहीं होता।
तो फिर किससे होता है?
मानवीय गुणों से, जैसे एम्बिशन, लालच, डर, टैलेंट, घमंड, कभी कभी एकदम इरेशनल हो जाना, ईमानदारी, ये सब चीजें तय करती हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा।
तो ब्रूक्स एक तरह से पूछ रहे हैं कि बिजनेस के वो कौन से नियम हैं जो बदलते नहीं।
और उनका जवाब है इंसान, जो लोग इसमें शामिल हैं, एग्जीक्यूटिव, इन्वेस्टर, कस्टमर, उनकी साइकोलॉजी, उनकी भावनाएं, यही सबसे बड़ा कांस्टेंट फैक्टर है। बिजनेस को समझना है तो इंसान को समझना होगा।
तो ये किताब हमें एक तरह से टाइम ट्रैवल कराती है, उस दौर के बोर्डरूम्स में, स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर ले जाती है।
बिल्कुल, कभी हम जेरोक्स का अविश्वसनीय उदय देखते हैं तो कभी फोर्ड एटसेट जी नाकामी पर सिर धुनते हैं। ये दिखाती है कि असल दुनिया का कैपिटलिज्म किताबों के सिद्धांतों से कहीं ज्यादा अस्त व्यस्त, ज्यादा मानवीय और सच कहूं तो ज्यादा दिलचस्प है।
चलिए अब कुछ खास कहानियों में उतरते हैं। पहली है द फ्लक्चुएशन, मार्केट का उतार चढ़ाव। ये 28 मई 1962 के स्टॉक मार्केट क्रैश की कहानी है, लगभग मिनट दर मिनट।
हाँ, ब्रूक्स ने वो माहौल गजब का बनाया है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कैसे एक मामूली गिरावट देखते ही देखते पैनिक में बदल गई।
वो टिकट टेप मशीन है, उस जमाने की टेक्नोलॉजी।
हाँ, जो शेयर के दाम बताती थी वो इतनी धीमी पड़ गई कि किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि असल में हो क्या रहा है, और इसी कंफ्यूजन ने डर को और भड़का दिया।
ये सीधे सीधे मार्केट साइकोलॉजी और हर्ड बिहेवियर दिखाता है ना? जब डर हावी होता है तो लॉजिक पीछे छूट जाता है।
बिल्कुल, और कमाल की बात यह है कि उस वक्त की जो फास्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, यानी टिकट टेप, उसने घबराहट को कम करने की बजाय फैला दिया। वो जानकारी का नहीं, डर का जरिया बन गया।
अरे हाँ, ये तो आज भी कितना रेलेवेंट लगता है। सोशल मीडिया, हाई स्पीड ट्रेडिंग, खबरें और इमोशंस कितनी तेजी से फैलते हैं अब।
सही कहा, ये कहानी आज भी उतनी ही मौजू है। याद दिलाती है कि बाजार सिर्फ नंबर गेम नहीं, इमोशंस का खेल भी है। खैर, मार्केट से निकलकर अब एक प्रोडक्ट की कहानी पर आते हैं।
अगला चैप्टर है द फेट ऑफ द एडसेल, एडसेल कार का किस्सा। ये तो शायद बिजनेस की दुनिया की सबसे मशहूर फेलियर स्टोरीज में से एक है।
बिल्कुल क्लासिक। फोर्ड मोटर कंपनी, उन्होंने एडसेल नाम की कार लॉन्च करने के लिए बेतहाशा पैसा खर्च किया, सालों रिसर्च की, खूब हवा बनाई, और नतीजा
एक डिजास्टर, बुरी तरह फ्लॉप।
इतनी बड़ी कंपनी, इतना पैसा, इतनी रिसर्च, फिर भी आखिर हुआ क्या था?
ब्रूक्स कई वजहें बताते हैं। एक तो था कॉर्पोरेट ह्यूब्रिस, मतलब कंपनी का अहंकार। फोर्ड को शायद लगने लगा था कि वो कुछ भी बनाएंगे बिकी जाएगा।
अच्छा,
और रिसर्च का क्या, वो तो की थी उन्होंने।
की थी, पर वो रिसर्च ही शायद गलत दिशा में थी। उन्होंने एक ऐसे ख्याली एवरेज कस्टमर की तस्वीर बनाई जो असल में था ही नहीं। या शायद उन्होंने डेटा में वो ही देखा जो वो देखना चाहते थे।
ये भी होता है, और अंदरूनी खींचतान भी थी। डिजाइन टीम कुछ और चाहती थी, मार्केटिंग वाले कुछ और कह रहे थे, कोई तालमेल ही नहीं था।
यहां तक कि कार का नाम एडसेल भी लोगों को कुछ जमा नहीं, फिर प्रमोशन इतना कर दिया कि उम्मीदें आसमान पर पहुंच गईं। जब कार आई तो लोगों को लगा, अरे इसमें क्या खास है।
ये कहानी एक चेतावनी है कि कैसे बड़ी कंपनियां भी अपनी ही सफलता के नशे में जमीन से कट सकती हैं।
अद है, सबको खुश करने की कोशिश में एडसेल किसी को पसंद नहीं आई। ये मार्केटिंग का कितना बड़ा सबक है, है ना? आप सबके लिए सब कुछ नहीं हो सकते।
सही बात है। तो एडसेल की नाकामी के बाद अब एक बिल्कुल ऑपोजिट कहानी, चैप्टर 5, ज़ेरॉक्स, 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 ज़ेरॉक्स। ये है छोटी सी कंपनी हॉलॉयड की कहानी।
हाँ, जिसने ज़ेरॉक्सफी नाम की एक नई अजीब सी लगने वाली टेक्नोलॉजी पर सब कुछ दांव पर लगा दिया, और फिर वो बन गई ज़ेरॉक्स, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक।
ये कहानी दिखाती है कि इनोवेशन का रास्ता कितना कठिन होता है। सालों तक हॉलॉयड ने स्ट्रगल किया,
और मजे की बात यह है कि IBM, GE जैसी बड़ी कंपनियों ने उनकी टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें समझ ही नहीं आया कि कोई कागज की कॉपी क्यों बनाना चाहेगा जब कार्बन पेपर है। तो
कमाल है, मतलब उनमें इंटेलिजेंस की कमी नहीं थी, इमेजिनेशन की कमी थी। वो एक ऐसी दुनिया सोच ही नहीं पाए जो उनकी मौजूदा दुनिया से अलग हो।
बिल्कुल, ये कहानी बताती है कि जो आइडिया आज अजीब लगे वो कल दुनिया बदल सकता है। हॉलॉयड की लीडर्स की विजन और उनकी टीम की लगन को दाद देनी पड़ेगी।
और जब ज़ेरॉक्स 914 कॉपियर मार्केट में आया, उसने तो ऑफिस का काम करने का तरीका ही बदल डाला।
हाँ, ये डिसरप्टिव इनोवेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अक्सर जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो ऐसे बदलावों को या तो देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते। ये कहानी हिम्मत और लॉन्ग टर्म विजन की जीत है।
ज़ेरॉक्स की कहानी तो इंस्पायर करती है, लेकिन अगली कहानी थोड़ी बेचैन करने वाली है। चैप्टर 7, द इम्पैक्टेड फिलोसोफर्स।
अच्छा, इसमें क्या है?
इसमें उस समय की दो सबसे इज्जतदार कंपनियों, जनरल इलेक्ट्रिक, जी और वेस्टिंग हाउस के कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव्स के बीच चल रही एक सीक्रेट डील का खुलासा है।
सीक्रेट डील किस तरह की?
प्राइस फिक्सिंग की। ये लोग आपस में मिलकर भारी बिजली उपकरणों की कीमतें तय कर रहे थे ताकि कंपटीशन न रहे और सबका मुनाफा बना रहे। ये गैर कानूनी था।
अरे,
जीई ऐसी कंपनी में ये तो चौंकाने वाली बात है।
ब्रूक्स क्या दिखाते हैं इसमें?
ब्रूक्स ये दिखाते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट कल्चर धीरे धीरे गलत चीजों को नॉर्मलाइज कर सकता है। मतलब किसी ने सीधे ऑर्डर नहीं दिया कि जाओ गैर कानूनी काम करो, सब इशारों में, दबे हुए प्रेशर से हो रहा था। नोइंग विंग्स कहते हैं इसे। और जब ये लोग पकड़े गए, और ये सब समाज के बड़े सम्मानित लोग थे, चर्च जाने वाले फैमिली मैन, तो वो अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए बड़े अजीब अजीब से तर्क दे रहे थे।
मतलब वो खुद को समझाने लगे थे कि ये तो बस बिजनेस करने का एक तरीका है।
ये वाकई सोचने वाली बात है। ये दिखाता है कि एथिक्स कोई स्विच नहीं है जो ऑन ऑफ हो, वो धीरे धीरे खत्म होती है, खासकर जब ऊपर से क्लियर गाइडेंस ना हो और कल्चर ही ऐसा बन जाए जो गलत को अनदेखा करे।
बिल्कुल, ये कहानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिकल लीडरशिप कितनी जरूरी है, इस पर एक जोरदार कमेंट है। इन सब कहानियों से कुछ चीजें एकदम साफ उभर कर आती हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा थीम तो यही है कि बिजनेस की दुनिया में असली बॉस ह्यूमन नेचर ही है। इमोशंस, डर, लालच, ईगो, उम्मीद, ये सब अक्सर लॉजिक और टेक्नोलॉजी पर हावी हो जाते हैं।
हाँ, और ये चीज तब भी सच थी, आज भी सच है। हम अपने रोज के काम में, ऑफिस पॉलिटिक्स में बड़े फैसलों में से देखते हैं।
दूसरा बड़ा खतरा है इंस्टीट्यूशनल ग्रुप थिंक और ह्यूब्रिस का, मतलब जब कोई संगठन या कंपनी बहुत सफल हो जाती है तो उसमें एक तरह का अंधापन आ जाता है, हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते।
एटसेल और जी वाली कहानियां यही दिखाती हैं, है ना?
बिल्कुल, ऐसे में वो बाहर की आवाज सुनना बंद कर देते हैं, अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं और जमीन से उनका कनेक्शन कट जाता है।
ये आज के इको चैम्बर्स जैसा ही है, जहां हम सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग आवाजों का होना और सेल्फ क्रिटिसिज्म कितना जरूरी है।
तीसरा थीम है इनोवेशन का अप्रत्याशित होना और कम्युनिकेशन का रोल। देखो एडसेल की कितनी प्लानिंग थी, फिर भी फेल। ज़ेरॉक्स को कोई पूछ नहीं रहा था, पर चल गई। मतलब आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लक और टाइमिंग भी मैटर करते हैं।
और लगभग हर कहानी में कम्युनिकेशन गैप्स या फेलियर एक बड़ी वजह नजर आती है, एडसेल के अंदरूनी झगड़े हों या जीई में वो इशारों की भाषा।
हाँ, साफ और ईमानदार बातचीत की कमी बहुत भारी पड़ सकती है। और चौथा सबक जो जीई और एक और कहानी है इरा हॉपटन कंपनी वाली, उससे निकलता है, वो है कैरेक्टर और एथिक्स का महत्व।
कि ये कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। लीडरशिप की इंटेग्रिटी, सिस्टम में भरोसे को बनाए रखने की जिम्मेदारी, ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बेहद जरूरी है। ये एक हार्ड एसेट है।
ब्रोक्स की लिखाई में कुछ बातें हैं जो सीधे दिमाग में लगती हैं। जैसे एडसेल पर वो कहते हैं, फोर्ड ने एक ऐसे ख्याली सबके लिए फिट कस्टमर के लिए कार बनाई जो था ही नहीं। सबको खुश करने के चक्कर में वो किसी को खुश नहीं कर पाई। कितनी सीधी बात है। डेटा अपनी जगह है, पर असली इंसान को समझना ज्यादा जरूरी है।
हाँ, या 1962 के क्रैश पर उनकी बात। जब पैनिक फैला तो वजह बेमानी हो गई। डर सबसे बड़ी ताकत बन गया और मार्केट में डर फैलता है। टिकर टेप जानकारी का नहीं, दहशत फैलाने का जरिया बन गया है।
ये मार्केट की इमोशनल वॉलेटिलिटी और हर्ड मेंटालिटी का कितना सटीक बयान है।
और ज़ेरॉक्स वाली कहानी से सोचने पर मजबूर करता है, बड़ी कंपनियों ने ज़ेरॉक्स को इसलिए रिजेक्ट नहीं किया कि उनमें दिमाग नहीं था, बल्कि इसलिए कि उनमें इमेजिनेशन की कमी थी। वो ऐसी दुनिया इमेजिन ही नहीं कर पाए जो उनकी जानी पहचानी दुनिया से अलग हो। ये दिखाता है कि कैसे जो लोग पहले से सफल हैं वो अक्सर बड़े बदलावों को देखने से चूक जाते हैं। और जी स्कैंडल पर वो बात, प्राइस फिक्सिंग करने वाले एग्जीक्यूटिव कोई विलेन जैसे नहीं दिखते थे, वो इज्जतदार चर्च जाने वाले फैमिली वाले लोग थे जो धीरे धीरे संकेतों और इशारों के कल्चर में ये मानने लगे थे कि उनका गैर कानूनी काम बस नॉर्मल बिजनेस है।
ये याद दिलाता है कि बुराई अक्सर कितनी मामूली शक्ल में आती है, मानकों के धीरे धीरे गिरने से और गलत काम के लिए बहाने बनाने वाले कल्चर से।
तो सवाल ये है कि इन पुरानी कहानियों का आज क्या करें, इनसे सीखकर हम अपनी लाइफ में क्या बदल सकते हैं?
मुझे लगता है काफी कुछ। देखो, अगर कोई लीडर या मैनेजर है तो पहला सबक, ग्रुप थिंक से बचो। अपनी टीम में ऐसे लोग रखो जो आपसे अलग राय रखने की हिम्मत करें। एडसेल और जीई से सीखो, क्लियर एथिकल स्टैंडर्ड सेट करो, सिर्फ कहने के लिए नहीं, अमल करने के लिए।
और अपनी आंखें कान खुले रखो, जमीन से जुड़े रहो।
बिल्कुल। और अगर कोई मार्केटर या प्रोडक्ट डेवलपर है तो एडसेल वाली कहानी याद रखो, एक्सेल शीट के लिए नहीं, असली इंसानों के लिए प्रोडक्ट बनाओ, यूजर की जरूरत समझो। और कितना भी हल्ला मचा लो, एक कमजोर प्रोडक्ट आखिर में टिक नहीं पाता।
हाँ, और जो लोग अपना कुछ नया शुरू कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, उनके लिए ज़ेरॉक्स की कहानी इंस्पिरेशन है। उन आइडियाज पर काम करो जो शायद बाकी दुनिया को क्रेजी लगें। अगर यकीन है तो लगे रहो, हिम्मत दिखाओ।
बिल्कुल। और इन्वेस्टर्स के लिए 1962 क्रैश से सबक, इमोशनल डिसिप्लिन रखो, भीड़ के पीछे मत भागो, न डर में बेचो न लालच में खरीदो, और सिर्फ नंबर्स मत देखो, कंपनी की लीडरशिप और कल्चर को भी देखो।
और शायद सबसे जरूरी सबक हम सबके लिए है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, क्लियर और डायरेक्ट बात करो, भारी भरकम कॉरपोरेट जार्गन के पीछे मत छुपो, अपनी टीम और अपनी मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आखिर में हर बिजनेस इंसानों से ही चलता है।
तो मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि बिजनेस की दुनिया कितनी भी बदल जाए, टेक कितना भी आगे बढ़ जाए, जो कोर ह्यूमन ड्रामा है वो नहीं बदलता। ये 60 साल पुरानी कहानियां आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। अच्छी कहानी कहने की ताकत कभी कम नहीं होती।
और मेरे लिए ये बात और पुख्ता हुई कि जिसे हम अक्सर सॉफ्ट स्टफ जैसे कल्चर, कैरेक्टर, एथिक्स मानकर इग्नोर कर देते हैं, वो असल में लॉन्ग टर्म सक्सेस की बुनियाद है। और हाँ, ह्यूमिलिटी का महत्व, आप कितने भी सफल क्यों ना हो,
ये याद रखना कि आप गलत हो सकते हैं, ये शायद सबसे बड़ी खूबी है।
तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल। ब्रुक्स दिखाते हैं कि ह्यूमन नेचर काफी हद तक कॉन्स्टेंट है। आज की किसी बड़ी बिजनेस स्टोरी या ट्रेंड को देखिए, आपको क्या लगता है वो कौन सा ह्यूमन एलिमेंट है जो उसे ड्राइव कर रहा है, जिसे हम शायद इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि सारा ध्यान टेक, डेटा या स्ट्रेटजी पर है? जरूर सोचिएगा इस पर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को हकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।